Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर भी एक नजर डालेंगे और ऑफ कोर्स चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन.
धन्यवाद प्राची.
चर्चा शुरू करेंगे मगर इससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices tumble, Sensex falls over 1,000 points, Nifty settles below 25,500. Major Asian stock markets decline and global crude oil prices fall.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 1,000 अंक से अधिक गिरा, वहीं निफ्टी 25,500 से नीचे बंद हुआ. उधर प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में भी मंदी और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें कम हुईं.
And before we begin with the top headline, there's an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Prachi.
बिल्कुल, रुख करते हैं अनुभा आज की पहली खबर की तरफ. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज भारी बिकवाली के चलते बाजार धड़ाम से गिरा. कारोबार की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई. सत्र के दौरान भी मार्केट में मंदी रही और आखिरकार दोनों ही सूचकांक नुकसान के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 1,048 अंक यानी 1.25% गिरकर 82,627 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 336 अंक यानी 1.3% गिरकर 25,471 पर आ गया.
Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended sharply lower today amid broad-based selling pressure. The markets opened with a gap down as selling pressure dominated the session and dragged the indices deeper into the red by the close. The Sensex nosedived 1,048 points or 1.25% to close at 82,627, while the Nifty sank 336 points or 1.3% to settle at 25,471.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.3% से अधिक, इटर्नल लगभग 4.2% और टाटा स्टील के शेयर 2.3% से अधिक गिरे. लाभ कमाने वाली कंपनियों में बजाज फाइनेंस के शेयर 2.4% से अधिक बढ़े और SBI 0.5% से ज्यादा बढ़ा.
Among the sectoral indices at the BSE, all 23 sectors tanked. Among the top drags, metal tumbled 3.2%, while realty, commodities and utilities plummeted about 2.3% each, and energy lost over 1.9%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,882 companies declined, shares of 1,318 companies advanced, while shares of 164 companies remained unchanged.
बात जानते हैं रुपये की. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे मजबूत होकर 90.64 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान समाचार तैयार किए जाने तक 97.06 पर चल रहा था. विशाल, हम यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले मैं और अनुभा इस बात पर मतलब कि बहुत ज्यादा हमें हैरानी हो रही थी कि हर तरफ जो सुर्खियों में है वो है आईटी सेक्टर, लेकिन जब हम परसेंटेज पे देखते हैं
जी बिल्कुल,
तो मेटल नजर आता है.
यस, इनफैक्ट Prachi, now that you've mentioned it, like Prachi is saying, Vishal, we saw the biggest, top drag in the BSE at the BSE was the metal sector, which tumbled by 3.2%. And in comparison, the IT sector, it was at 1.44%. It lost about 1.44% at the end of the day. So if you look at it, actually, realistically speaking, looking at the figures, It's a metal and then followed by realty, commodities and utilities, which were the biggest drags. But actually, what brought the markets down were, as is being discussed, are the IT stocks. So what is the reason that, you know, that small percentage, but still it had the biggest effect?
Well, you know, we will have to understand the data more clearly. And there is pretty much, you know, if you look at the data, then sectorally speaking, of course, the biggest drop is in metal. But then when we look at the overall picture, the larger picture, then we will also need to take into consideration as to how much that sector's exposure to the larger market is. Now, I'll give you some figures specifically with respect to the Nifty 50, because that's largely also the indicator which, you know, foreign investors also look at. Now, in Nifty 50, the share of IT sector is approximately 10%. Mm-hmm. The share of financials, I was looking at, you know, all the data. Not many people are talking about the financial sector. The share of financial sector is around 37%. Mm-hmm. Then comes metals, realty, and so on and so forth. Now, the drop in metals and realty is almost double than that of IT and financial.
Absolutely.
Mm-hmm. But the biggest draggers are considered to be from IT sector and the financial sector.
Pichle 6 mahine, maaf kijiyega, pichle 6 hafton mein, jab hum dekh rahe hain, to main kisi vishwasniya sansthan ki report pad rahi thi, aur usme maine dekha ki aap सही करिएगा अगर मेरे आंकड़े गलत हो, कि 4 trillion मतलब कि पैसे जो हैं, यानी कि 4 lakh crore रुपए जो हैं, वो आईटी सेक्टर के मतलब कि जो हमारा जो मार्केट कैपिटल है वो गवा दिया उसने।
जी बिल्कुल, और ये इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस एक्सपोजर की मैं बात कर रहा था, अगर आईटी सेक्टर का एक्सपोजर या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में लगभग 10% के आसपास है
जी,
और उसमें 1.44% के आसपास, 1.5% के आसपास की अगर गिरावट देखी जाए, तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा बनिस्बत मेटल्स का, जिसमें गिरावट शायद लगभग 2.5% के आसपास होगी या 3% के आसपास होगी, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल मार्केट में जो आईटी सेक्टर है या जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके जितना ही है। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा था लगभग 37% के आसपास। फाइनेंशियल सेक्टर में भी निफ्टी 50 के अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो आज गिरावट लगभग 1.5% के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। और आईटी सेक्टर की आपने बात की, देखिए आईटी सेक्टर के बारे में अगर इस चर्चा को थोड़ा सा और विस्तार में ले जाएं तो बहुत महत्वपूर्ण है आईटी सेक्टर को देखना, क्योंकि लार्जली दिस इज कंसिडर्ड टू बी ड्रिवन बाय you know, the AI index, the
Absolutely.
Artificial intelligence.
And I was coming to that only because, you know, I'm glad you brought this point up, Vishal, because as we were discussing the reasons for the drag in the IT sector, one of the reasons or the biggest reason being mentioned is that disruption, AI disruption worries.
AI phobia, kahin na kahin jo
hai. What is this AI disruption worries that has spooked the markets?
Okay, now we'll first talk about the worry and then we'll also take a look at the other side of the coin as well as to why this might end up being, you know, a blessing in disguise for Indian markets.
Right.
First, let's talk about why this is causing that much, you know, concern. Now, the disruption when we talk about is, let's look at the model of the Indian IT industry over the years, over the decades, the way we have functioned. You know, Indian IT companies have you know, earned a lot of money, profits based on the manpower model. That is, you know, we provided manpower resources to the foreign companies from, you know, US or Europe, the Western countries. And we were billing them for manpower. Now, what AI does now is that it automates, you know, coding, testing, all these things. So the clients are now, you know, asking for a change in the billing model.
Right.
They're saying, we'll not go by manpower, we'll go by the results delivered. Now, this is a very huge structural change for you know, big IT companies like Infosys, TCS, and all this. They have huge presence. They have a huge book as well. They have a large number of clients and large number of employees also. So they will have to retune themselves. So what happens is now the structural change is causing a concern amongst investors, and the earning figures are not yet out, but that is why the fear amongst the investors, a section of the investors, is that this might have a negative impact, but that negative impact will only be in the short term.
Okay.
A short run, because this is, as I was saying, a structural change. Right. Now, the structural change will take some time to manifest.
Mm-hmm.
Of course, these are big companies, huge companies run by professionals. They will maneuver themselves and put themselves in a place where they can make use of artificial intelligence for their benefit as well, and for their clients' benefit also. So that's the worry part. But let's look at the other side of the coin, where it might end up being a blessing in disguise. And that is, पिछले साल जब आईटी सेक्टर में उछाल आया था एआई को लेकर, बड़ी सारी उम्मीदें जगी थी, तो हमारा जो आईटी सेक्टर है, यानी कि भारत का जो आईटी सेक्टर, उसमें हम थोड़ा सा पिछड़े थे. हम थोड़ा सा इसलिए पिछड़े थे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में जहां अमेरिका की जो प्रावस है या फिर बाकी कई देशों की और जो प्रावस है, उसके मुकाबले में हमारी उतनी प्रावस पिछले साल नहीं थी. लेकिन अब इसे अगर हम करेक्शन के तौर पे देखें, तो यानी कि हम जहां थे वहां मतलब सेक्टर घूम के वापस आ रहा है, और हमारी जो एक्सपर्टीज है, हमारा जो प्रावस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो पिछले एक साल में बढ़ा है. तो यानी कि हम उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं. हालांकि मेरा मानना है कि कॉशियस अप्रोच रखी जानी चाहिए. दिस इज The baseline is that this is not a panic moment.
Okay.
This is all driven by the data.
यानी कि थोड़ी सी शिथिलता है, मगर अभी भी संभावनाएं हैं.
जी बिल्कुल. और ये सब जो है, जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से बाजार चल रहा है. ऐसा नहीं है कि बाजार में किन्हीं चार इन्वेस्टर्स ने या 400 इन्वेस्टर ने सोचा कि नहीं, आज हम आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बेचेंगे. तो वो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा, नंबर एक. और नंबर दो, हम केवल आईटी सेक्टर की तरफ ना देखें, इसमें यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा है उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि और आईटी की तरफ ही देखें तो नेस्टेक कंपोजिट में आईटी सेक्टर में मेरे ख्याल से लगभग 4% के आसपास की गिरावट है.
दो प्रतिशत से ज्यादा
की गिरावट. तो वो इम्पैक्ट पड़ना लाजमी है, नंबर एक. और नंबर दो, जो जॉब डेटा आया था वो स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड था. अब अगर जॉब डेटा स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड है, तो उसका नुकसान ये है कि फेड रिजर्व से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रेट कट करेंगे, और वो रेट कट नहीं करेंगे तो जो एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और मार्केट्स हैं भारत जैसी, उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. अब ऐसा है, इसका ठीक उलट जो है सीपीआई डेटा के साथ है. अब अगर सीपीआई डेटा ज्यादा आएगा, तो इसका उसका नुकसान यूएस इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा, और यूएस इकोनॉमी को अगर नुकसान हो रहा है, तो वो उनके स्टॉक मार्केट पे दिखेगा, और उसके रेमिनेंट इफेक्ट जो है वो बाकी शेयर मार्केट्स में भी दिखेंगे. तो इट्स ऑल वेल इंटरकनेक्टेड.
तो अभी के जो करेक्शन आए, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कि उसको आप सकारात्मक रूप देखते हैं, या आप उसे देखते हैं कि नहीं? मतलब
मेरा मानना है कि इसे हमें सेक्टर वाइज देखना चाहिए. से हमने आईटी सेक्टर की बात की, आईटी में मेरा मानना है कि हाँ, कुछ तरीके से इसको, किसी कई एंगल से इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है. लेकिन अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में फाइनेंशियल सेक्टर को रिकवर करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई कारण है नहीं. कोई ऐसा कोई बहुत मतलब बड़ा कोई वाजिद कारण नहीं दिख रहा है कि जिस वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि एक एक रैली चलती है तो उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है. मेटल्स थोड़ा वोलेटाइल सेक्टर है इस टाइम, और अगर बाकी सेक्टर्स की बात करें, तो अब अर्निंग्स के आंकड़े भी आने शुरू होंगे, तो उसका भी असर हमको देखने को मिलेगा धीरे धीरे.
इन अ नटशेल विशाल, व्हाट यू स्पोक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द यूएस फेड नॉट गोइंग टू, यू नो, नॉट no expectations from US Fed to cut the rates, interest rates, because of better than expected job numbers. On the other hand, we were talking about the CPI figures. So from a common investor point of view, what is it, you know, that what can the investors do to protect their investments at this juncture? Because we have seen in this 1 month only, in the, you know, since the beginning of February itself, we have seen that both the indices have been, benchmark equity indices have been on a roller coaster. Budget, Feb 1, budget day, indices are down.
Mm-hmm.
2 days later, when India-US trade agreement is announced, the indices recover. And then again, we have seen this roller coaster ride. So what can a common investor do to protect his or her investment?
See, there's always a short-term outlook, a mid-term outlook, and a long-term outlook. It depends what kind of investor and how much appetite the investor has. For example, the back of the hand rule in the market is that if the markets are falling, you know, then it's an opportunity.
Buy on the dip.
You can go ahead and buy on the dip as well. But then again, that's why I said, you know, it depends on the investor's appetite.
Yeah.
Let's go a step further. You spoke about, you know, the moment in the market. It came down, it went up, then it again came down, and now it has gone down again. Now, India-US trade deal, you mentioned. See, of course, this was a positive sentiment, but it'll take at least 8 to 9 months for the results to, you know, trickle in. And when the results start trickling in, we will see the impact on the market as well.
Right.
So one underlying principle, as I've always said, is that don't sell in panic when the markets go down. If you have the faith in the scripts which you hold, then, you know, perhaps, and if you have the appetite, you can go ahead and buy on the dip as well. If not, then look at how the markets are performing, how the sector, specific sector in which you invested is performing, and what's the future outlook in terms of policy, in terms of indications which are coming in, and then only take a call. Otherwise, you know, just looking at the red chart and the green chart is not investing.
यानी कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है अभी अपने जो निवेश किए हुए हैं जैसा कि अनुपा बता रही थी,
गहरी सांस लें, थोड़ा शांत रहें और फिर सोच समझ कर आगे बढ़ें,
केवल लाल हरी लाइनों के हिसाब से
फैसले ना लें।
जी
ठीक है आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। प्रमुख एशियाई सूचकांक नुकसान के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंगसैंग सूचकांक 1.7% से अधिक गिरा। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स लगभग 1.6% फिसला। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 1.3% गिरा। जापान का निकेई सूचकांक 1.2% लुढ़का। वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% नीचे आया। बात करें यूरोप के बाजार की तो यूरोपीय सूचकांक आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। फ्रांस का कैक लगभग 0.5% गिरा। लंदन का फुटसी 0.1% से अधिक नीचे आया और जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक स्थिर रहा।
Let's move on to the US markets. Major US indices fell sharply yesterday as tech stocks slid on AI disruption worries, and transportation shares also came under pressure. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index plunged over 2%, the S&P 500 shed nearly 1.6%, and the Dow Jones Industrial Average dropped over 1.3%. Of course, we've discussed this, Vishal, in quite detail just now, but like we were talking, Nasdaq plunged obviously more than 2% on AI disruption worries. And you spoke about the, you know, figures that have come out, the U.S. economy figures. But there's also CPI data, you know, expected later in the day. What are your expectations? I mean, what are we looking at here? Are the markets likely to decline further, the U.S. markets?
Well, if you ask my personal opinion, honestly, I don't see any, you know, any positive outlook as far as CPI data is concerned, because let's look at how the US economy has been struggling for the past few months, and there has been a lot of upheaval in the US economy as well. A lot of promises made by their government have not materialized in terms of you know, additional revenue generation from steps like you know, Trump tariffs or other basic infrastructure problems which the US economy has. They've you know, they've not been able to go ahead and decide on core spending issues. That's why we've seen you know, one good shutdown and then a sort of a partial shutdown as
right
well
now,
so you know, that speaks a lot about where the priorities are slightly mixed. And its impact is also seen on the CPI data, on the overall economy as well. Now, there might be a slight change, you know, but largely speaking, I still believe this is not a very, very good time for the U.S. economy. They're still not out of the woods.
Okay.
And perhaps, you know, the U.S. government will work their way out because it's pretty much indicative in the kind of data which trickles in. Job data was a positive indicator. Mm-hmm. But then again, you know, that leaves a bit of a, you know, a confusion for the Fed Reserve's actions as well. Which way should they go? Again, now that there is a new, you know, man in charge of the Federal Reserve, there might be some sort of, you know, more composite movement by the Federal Reserve.
We'll have to wait and see.
In sync with the government policies and all that. So let's see how it goes further ahead. But again, not very helpful.
Okay, hopefully. Let's move on to the next story. India's foreign exchange reserves witnessed a decline of $6.7 billion, reaching $717 billion for the week ending on 6th of February. According to the Reserve Bank of India, gold reserves dropped by $14.2 billion to $123 billion. Special drawing rights decreased by $132 million to $18.8 billion, and central bank's position in the International Monetary Fund also dipped by $32 million to $4.7 billion. In contrast, foreign currency assets, which form the largest component of the reserves, climbed by $7.6 billion to $570 billion during the week. The change in foreign currency assets is influenced by fluctuations in currencies such as the euro, pound, and yen. Vishal, if I were to ask you to just simplify it for our listeners, you know, so many figures, foreign exchange reserves have witnessed a decline, but on the other hand, foreign currency assets have climbed. So for our listeners, in a nutshell, what does it mean?
Our assets have climbed because when we talk about assets, of course, something which is measured in the foreign currency, and our assets are on the increase for quite some time now. But as far as forex reserves are concerned, this is something which is not to be worried about.
Okay,
because this is a data which keeps on fluctuating. It also depends upon the dollar rupee tango and of course how is dollar behaving in terms of vis-a-vis other currencies also, and so on and so forth. There's so many composite aspects of the larger situation. So these are the figures which I would not worry about unless there is a huge sharp dip, which it is not. So of course we should not be worried about it. But yes, a related portion to that is that the de-dollarization tirade by countries like Russia, Brazil, and China seems to be having some impact on dollars' health globally, and that might make the U.S. Economy strategists to perhaps think out of the box. Let us see which box they choose this time. So
right, let's move on. Both houses of parliament have been adjourned for a break and will reconvene on the 9th of next month. The first leg of the budget session began on the 28th of last month with the address by President Draupadi Murmu to a joint sitting of both houses. The budget session is being held in two phases, and the second phase will take place from the 9th of March to the 2nd of April this year. Next story from Prachi.
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने बताया कि सरकार ने किसानों की उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 44,243 कस्टम हायरिंग सेंटर, 25,854 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, 17,000 से अधिक गोदाम और लगभग 3,000 शीत भंडारण इकाइयां स्थापित की गई हैं। श्री चौहान ने बताया कि इन पहलों से फल तोड़ने और सब्जियों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान में 5-15% की कमी आई है।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की समस्या को पहचाना और पहचान कर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संरचनाएं किसानों के उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाएगी। ये ऐतिहासिक फैसला किया। इसके कारण जो फसलों का नुकसान होता था, फल और सब्जियों का नुकसान होता था, उस नुकसान में 5-15% तक की कमी आई।
विशाल जी, बड़े संक्षिप्त में ये मैंने जैसा सुना, हम लोगों ने जैसा सुना कि किसानी की जो रीढ़ है उसको मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक पहल नजर आ रही है।
देखिए, कृषि क्षेत्र हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ हमेशा से रही है, और अगर हम पॉलिसीज की तरफ ध्यान दें तो लगभग हर बार हर बजट में सरकारों का जो नजरिया रहा है वो हमेशा यही रहा है कि इस क्षेत्र को किस तरह से और मजबूती दी जाए, और अलग अलग समय में अलग अलग तरह के इंटरवेंशंस किए जाते हैं। अभी कृषि मंत्री ने जिस फंड की बात की उससे और फायदा मिलेगा, खासतौर पे जो हम कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसकी बात करते हैं, और कृषि के क्षेत्र में और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर और खासतौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में उसको कैसे और बढ़ावा दिया जा सके, इस पर जो जोर दिया जाएगा उसका उसके ही नतीजे सामने देखने।
बिल्कुल।
The next story is also related to agriculture. The government has approved the export of 25 lakh metric tons of wheat along with an additional 5 lakh metric tons of wheat products to stabilize domestic markets and ensure remunerative returns to producers. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that this decision was taken after a comprehensive assessment of the current availability and price scenario. It added that the government's decision to permit export of 25 lakh metric tons of wheat and 5 lakh metric tons of wheat products will help stabilize domestic prices, improve market liquidity, ensure efficient stock rotation and strengthen farmers' income. It said that the wheat stock availability with private entities during 25-26 stands at approximately 75 lakh metric tons, which is nearly 32 lakh metric tons higher compared to the corresponding price last year. Vishal, a very quick comment. This lifting of ban on wheat export has come after more than 3 years. What do you have to say about that?
Well, pretty much required, because our produce has been steadily growing, and we've of course been able to, you know, cater to our domestic market, and whatever is left behind is something which we should, of course, make use of the opportunity and go ahead and earn some, you know, foreign currency by exporting it. Now, this becomes significant, as you're pointing out, because from several perspectives, because there are two trade deals which we're talking about here, India-EU FTA and of course India-US trade deal as well. So again, it'll take some time to try and understand the overall impact as to how much the impact it has and what kind of positive note it adds to the economic structure.
Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices fell today. Brent crude was trading around 0.6% down at $67.13 per barrel, and WTI crude was trading 0.7% down at $62.40 per barrel when reports last came in. Good news for India specifically, Vishal, because, you know, if you look at the bigger picture, there have been, you know, certain US and the tensions between US and Iran. So looks like, thankfully, that's not had much impact on the price of the crude oil prices.
Well, not yet. But again, let's keep our fingers crossed, because this is a developing situation geopolitically. Mm-hmm. And there is a lot of to and fro which is happening between US and Iran as well. They're yet to come to, the final agreement, which we say, and both sides seemingly have a lot of reservations. And let's not forget the third player, which is Israel as well.
Right.
So again, so far, so good, but for the time being. Gee. And let's keep our fingers crossed.
Right. Let's move on to gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.9% up at 1,53,950 rupees per 10 grams. Silver was trading 2% higher at 2,43,010 rupees per kilogram a short while ago.
Multi-commodity exchange mein taza samachar tayar kiye jane tak April anubandh wala sona 0.3% badhkar 1,53,305 rupees prati 10 gram par tha, aur wahi March anubandh wali chandi 2.5% badhkar 2,42,361 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। विशाल, क्या ऐसा माना जा सकता है कि अब कंसोलिडेशन पर आ गए हैं गोल्ड के प्राइसेस?
देखिए, सोने और चांदी की अगर बात करें तो उसे एक पीरियोडिक कंसोलिडेशन माना जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था कि अगर जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, अगर उनमें कोई भी नेगेटिव बदलाव देखने को मिलता है, तो इसमें फिर उछाल देखने को मिल सकता है।
विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद प्राची, थैंक यू।
Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices tumble, Sensex falls over 1,000 points, Nifty settles below 25,500. Major Asian stock markets decline and global crude oil prices fall. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team, Namaskar.
Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Good luck.